एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की। हम सब देखते हैं इन्हें, है ना, नेटफ्लिक्स पर, यूट्यूब पर, टीवी पर।
हाँ बिल्कुल, कभी कोई बड़ी घटना का खुलासा, कभी किसी की जिंदगी की कहानी।
सही,
पर कभी सोचा है कि ये जो सच हमें परोसा जा रहा है वो कितना सच है? मतलब क्या ये बस कैमरे से रिकॉर्ड की हुई हकीकत है? यही वो सवाल है जिस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, और इसके लिए हम मदद लेंगे मीडिया स्कॉलर पैट्रिसिया ऑफ्टरहाइट की।
पैट्रिसिया ऑफ्टरहाइट?
हाँ,
मैंने सुना है इनका नाम।
जी, उनकी जो किताबें हैं खासकर डॉक्यूमेंट्रीज पर, वो हमें इन फिल्मों को एक अलग नजरिए से देखना सिखाती हैं, एक पैना नजरिया कह सकते हैं।
और ये आज के जमाने में जरूरी क्यों है? मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ।
इसीलिए तो हम एक तरह से सूचना के मतलब समंदर में हैं।
जी,
वीडियोस, क्लिप्स, खबरें, और कई बार वो डॉक्यूमेंट्री का लेबल लगा के आती हैं।
अच्छा।
और वो दावा करती हैं सच्चाई दिखाने का।
अच्छा।
ऑफ्टरहाइड हमें सिखाती हैं कि इन दावों को कैसे परखें, ये समझना कि वास्तविकता को कैसे पेश किया जा रहा है, ये आज बहुत जरूरी स्किल है।
तो पहले पैट्रिसिया ऑफ्टरहाइट के बारे में थोड़ा और जान लें, ये है कौन?
जी, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन स्कूल में प्रोफेसर हैं और डॉक्यूमेंट्री स्टडीज में एक बहुत बड़ा नाम है।
पर वो सिर्फ किताबी विद्वान नहीं है।
अच्छा, मतलब?
मतलब वो जमीनी मुद्दों से भी जुड़ी रही हैं, मीडिया पॉलिसी, कॉपीराइट कानून, इन सब पर भी उनका काम है।
ओह हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने फिल्मकारों के लिए वो फेयर यूज गाइडलाइन बनाने में मदद की थी।
बिल्कुल वही, इससे पता चलता है कि वो जानती है कि फिल्में बनाना सिर्फ थ्योरी नहीं है, उसमें असली दुनिया की दिक्कतें भी आती हैं। सही कहा। तो ये जो उनका अनुभव है, अकादमिक भी और प्रैक्टिकल भी, ये उन्हें खास बनाता है।
हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से थ्योरी और प्रैक्टिस को जोड़ती हैं, फिल्म बनाने वाले, फिल्म की आलोचना करने वाले और हम जैसे देखने वाले, उनके बीच की खाई को वो पाटती हैं कह सकते हैं।
तो फिर उनकी किताबों का सार क्या है? मतलब वो सबसे बड़ी बात क्या कहती हैं डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में?
उनका जो सबसे मुख्य तर्क है वो जॉन ग्रियर्सन की एक पुरानी परिभाषा पर टिका है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में वो असलियत की कॉपी नहीं है।
कॉपी नहीं है तो फिर क्या है?
वे हैं वास्तविकता का रचनात्मक प्रस्तुतिकरण, क्रिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअलिटी।
रचनात्मक प्रस्तुतिकरण सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब गहरा है, मतलब ये कि जो हम देख रहे हैं वो कच्ची हकीकत नहीं है, वो किसी ने सोची समझी है, चुनी है, एडिट की है, सजाई है, एक तरह से रची है।
अरे मतलब ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, मैं तो सोचती थी खासकर पुरानी वाली फिल्में वो बस कैमरा चालू करके रिकॉर्ड कर लेते होंगे।
और बस यही ऑटोराइड हमारी आम समझ को चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं कि हर फैसला, कैमरा कहाँ रखना है, म्यूजिक कौन सा लगाना है, किसका इंटरव्यू लेना है, किसका नहीं,
हाँ,
किस बात को कैसे काटना जोड़ना है, ये सब रचनात्मक फैसले हैं।
हाँ,
और ये सब मिलकर फिल्म की एक आवाज बनाते हैं,
वॉइस,
एक खास नजरिया,
आवाज।
यानी हर डॉक्यूमेंट्री का, चाहे वो कितनी भी ऑब्जेक्टिव लगे, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक एंगल।
एंगल तो होता ही है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कोई छुपा हुआ एजेंडा हो।
हाँ,
पर एक नजरिया, एक तर्क जरूर होता है।
बिल्कुल,
वो हमें दुनिया को एक खास तरह से देखने के लिए उकसाती है।
ऑफ्टरहाइट की किताबें इसी सवाल का जवाब ढूंढती हैं कि ये फिल्में काम कैसे करती हैं, हमें प्रभावित कैसे करती हैं।
हाँ,
और वो हमें सिखाती हैं कि स्क्रीन पर जो सच दिख रहा है उस पर सवाल कैसे उठाएं।
ठीक है, तो ये रचनात्मक प्रस्तुतिकरण वाली बात को थोड़ा और खोलते हैं। आपने कहा वास्तविकता और रचनात्मक प्रस्तुतिकरण।
हाँ, वास्तविकता मतलब फिल्म का आधार असली दुनिया है, असली लोग, घटनाएं, जगहें, कोई फिक्शन नहीं।
ठीक है,
लेकिन रचनात्मक प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि फिल्म बनाने वाले ने इस असलियत को अपने नजरिए से पेश किया है, उसे एक रूप दिया है।
और यहीं पे वो भरोसे वाली बात आती है
दर्शक और फिल्मकार के बीच।
बिल्कुल, वो भरोसे का समझौता, पैक्ट ऑफ ट्रस्ट। हम ये मानकर फिल्म देखते हैं कि इसका हकीकत से कोई नाता है,
और फिल्मकार इसी भरोसे को इस्तेमाल करके अपनी आवाज हम तक पहुंचाता है, एडिटिंग से, कैमरा एंगल से, किरदारों से, है ना?
एकदम सही। और इतिहास देखें तो ये और साफ हो जाता है। शुरू में लूमियर ब्रदर्स ने क्या दिखाया? ट्रेन आ रही है, मजदूर निकल रहे हैं, सीधी एक्चुअलिटीज।
हाँ, वो तो बस रिकॉर्डिंग जैसी लगती हैं। फिर आए रॉबर्ट फ्लाहर्टी 1922 में नैनोक ऑफ द नॉर्थ लेकर। कहानी तो एक इनुइट परिवार की थी, पर उसे दिलचस्प बनाने के लिए उन्होंने कुछ सीन रिक्रिएट किए, मतलब स्टेज किए।
अच्छा, वहीं से ये बहस शुरू हुई होगी कि कितना रचनात्मक होना ठीक है।
बिल्कुल। दूसरी तरफ रूस में थे डिजिगा वेर्तोव, मैन विद अ मूवी कैमरा। उसमें कोई कहानी नहीं, बस शहर का जीवन जैसे कैमरा देख रहा है।
हाँ, वो तो बहुत अलग फिल्म है।
उनका मानना था कि कैमरा वो इंसानी आंख से ज्यादा गहरा सच देख सकता है, कीनो प्रावदा यानी फिल्म सत्य। वो फिल्म बनाने की प्रक्रिया को छुपाते नहीं थे, दिखाते थे। और फिर वो दौर भी आया जब डॉक्यूमेंट्री का भयानक इस्तेमाल हुआ
प्रोपेगेंडा के लिए।
लेनी रिफेनस्टाहल की नाजी फिल्में,
हाँ,
ट्रायंफ ऑफ द विल, कमाल की सिनेमाटोग्राफी, लेकिन एक खतरनाक विचारधारा के लिए। ये दिखाता है कि ये मीडियम कितना पावरफुल है और कितना खतरनाक भी हो सकता है।
तो मतलब शुरू से ही ये मामला सिर्फ सच दिखाने का नहीं रहा, बल्कि सच को बनाने या पेश करने का भी रहा है।
सही पकड़ा। और फिर टेक्नोलॉजी बदली, 1960s में हल्के कैमरे आए।
हाँ, उससे तो क्रांति आ गई होगी।
बिल्कुल। दो बड़े मूवमेंट शुरू हुए, डायरेक्ट सिनेमा और सिनेमा वेरिटे। एक तरफ फ्रेडरिक वाइजमैन जैसे लोग थे, दीवार पर मक्खी बनकर बिना दखल दिए बस रिकॉर्ड करते जाना।
हाँ, उनकी फिल्में बहुत लंबी और बिना किसी नरेशन के होती हैं।
सही। दूसरी तरफ थे सिनेमा वेरिटे वाले जैसे जीन रूश। वो मानते थे कि कैमरा तो माहौल बदलता ही है, तो क्यों ना ऐसे माना जाए। वो खुद फिल्म में आते, लोगों से बात करते, उन्हें उकसाते भी थे।
अच्छा, तो उनका मानना था कि कैमरे के सामने लोग ज्यादा सच बोलते हैं।
हाँ, या एक अलग तरह का सच सामने आता है। तो देखिए, सच तक पहुंचने के कितने अलग अलग रास्ते खोजे गए। और ऑफ्रोडाइट बताती हैं कि ये अलग अलग स्टाइल आज भी हैं। बिल निकोल्स ने इन्हें कुछ मोड्स में बांटा है। ये कोई सख्त कैटेगरी नहीं है, बस समझने के तरीके हैं।
कौन कौन से हैं ये मोड्स?
एक है व्याख्यात्मक मोड, एक्सपोजिटरी। ये क्लासिक स्टाइल है, एक अथॉरिटी वाली आवाज, नरेशन जो हमें सब समझाती है, जैसे न्यूज डॉक्यूमेंट्री या केन बर्न्स की फिल्में।
हाँ, वो भगवान की आवाज वाली स्टाइल।
बिल्कुल। फिर है अवलोकनात्मक मोड, ऑब्जर्वेशनल, वाइजमैन वाला। कोई नरेशन नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस कैमरा देखता रहता है, दर्शक खुद मतलब निकालते हैं।
ये दोनों कितने अलग अनुभव है,
है ना? और फिर है सहभागी मोड, पार्टिसिपेटरी। इसमें फिल्मकार खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है, लोगों से मिलता है, सवाल पूछता है, जैसे माइकल मोर करते हैं।
हाँ, वो तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपनी फिल्मों में।
जी जी, ये तीन मुख्य स्टाइल दिखाते हैं कि फिल्मकार असलियत से कैसे जुड़ता है और हमें कैसे जुड़ता है। और भी मोड हैं, जैसे पोएटिक, रिफ्लेक्सिव, परफॉर्मेटिव, पर ये तीन ज्यादा कॉमन हैं।
तो ये अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके फिल्म अपना मतलब कैसे बनाती है, किन चीजों का इस्तेमाल होता है?
कई चीजें हैं, कहानी की संरचना, नैरेटर की आवाज और भाषा, इंटरव्यू किसे चुना, क्या पूछा, कैसे एडिट किया।
हाँ, इंटरव्यू तो बहुत मायने रखते हैं।
बिल्कुल। पुराने फुटेज का इस्तेमाल, उसका मतलब नए कॉन्टेक्स्ट में बदल जाता है। और सबसे जरूरी, संपादन, एडिटिंग, सीन कैसे जोड़े गए हैं, किस पेस पर काटे गए हैं। दो शॉट मिलकर एक तीसरा मतलब बना सकते हैं। ये सब मिलकर फिल्म की आवाज और उसका तर्क बनाते हैं।
और यही नैतिकता का सवाल आता है, जिसकी बात ऑफ्टरहाइड करते हैं। ये तो काफी मुश्किल लगता है।
है, क्योंकि इसमें पावर डायनामिक्स हैं। फिल्मकार के पास ताकत है किसी को दुनिया के सामने पेश करने की। क्या उन्होंने अपने सब्जेक्ट से सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली है?
मतलब क्या वो इंसान सच में समझता है कि उसकी कहानी कैसे दिखाई जाएगी और उसका असर क्या होगा?
हाँ, खासकर जब कमजोर तबके के लोगों की बात हो। फिर प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। कहीं फिल्म पुरानी घिसी पिटी सोच को तो बढ़ावा नहीं दे रही।
हाँ।
दर्शकों के प्रति भी तो जिम्मेदारी है ना। हाँ, उन्हें गुमराह ना किया जाए।
बिल्कुल। वो वाइजमैन की फिल्म थी ना, टिक टक कट फॉलीज, एक मेंटल हॉस्पिटल पर। उसने भयानक सच्चाई दिखाई, पर सवाल उठे कि क्या मरीजों की प्राइवेसी भंग हुई? ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है।
ऑफ्टरहाइड कहती हैं, नैतिकता कोई रूल बुक नहीं है, ये हर कदम पर अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना है।
और अब तो डिजिटल युग आ गया है, इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा।
हाँ, बहुत कुछ। अब तो कोई भी फोन से शूट करके डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, प्रोडक्शन सस्ता हो गया।
और डिस्ट्रीब्यूशन, यूट्यूब, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
सही। नए मॉडल आ गए, इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं जहां दर्शक कहानी चुन सकते हैं। वीआर, एआर जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है।
लेकिन चुनौतियां भी तो बड़ी होंगी, इतना सारा कंटेंट है।
हाँ, ध्यान खींचना मुश्किल है, और फेक न्यूज, डीप फेक का जमाना है। अब कोई भी वीडियो बनाकर डॉक्यूमेंट्री कह सकता है। सच्चाई का दावा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
शायद इसीलिए ऑफ्टरहाइड जैसे लोगों की बातें सुनना और जरूरी हो गया है।
बिल्कुल। तो चलिए कुछ मुख्य संदेशों को समेटते हैं। सबसे बड़ा सबक क्या है इस सबसे?
मेरे लिए तो सबसे जरूरी बात यही है, डॉक्यूमेंट्री आईना नहीं है, ये एक रचना है। इसे सच मान लेने से पहले पूछना जरूरी है, किसने बनाई, क्यों बनाई, इसका नजरिया क्या है। जैसे कोई विवादित मुद्दे पर फिल्म देखें तो तुरंत यकीन करने के बजाय सोचना चाहिए कि दूसरा पहलू क्या है।
सही। दूसरा, आवाज को पहचानना। हर फिल्म का एक नजरिया होता है, छिपा हुआ या खुला, उसे पहचानना जरूरी है ताकि हम समझें कि हमें किस तरफ सोचने के लिए कहा जा रहा है। एक ही घटना पर दो अलग फिल्में बिल्कुल अलग महसूस करा सकती हैं सिर्फ अपनी आवाज के फर्क से।
तीसरा, वो नैतिकता वाली बात, फिल्म बनाने वाले के अपने किरदारों और दर्शकों दोनों के प्रति जिम्मेदारी। ये पावर बैलेंस और प्रतिनिधित्व का सवाल हमेशा रहता है। भारत में भी तो अक्सर विवाद होते हैं किसी समुदाय या व्यक्ति के चित्रण पर।
हाँ, ये बहुत प्रासंगिक है। चौथा, डॉक्यूमेंट्री सिर्फ जानकारी या मनोरंजन नहीं है, ये एक सामाजिक राजनीतिक ताकत है। ये राय बदल सकती है, मुद्दे उठा सकती है या प्रोपेगेंडा भी बन सकती है। जैसे वो एल गोर की फिल्म एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ, उसने क्लाइमेट चेंज पर बहस तेज कर दी थी।
और पांचवा, टेक्नोलॉजी का असर। इसने हमेशा इस मीडियम को बदला है और बदलती रहेगी। इससे मौके भी हैं, चुनौतियां भी। अब मोबाइल से कोई भी अपनी कहानी कह सकता है, ये भी तो बड़ी बात है।
हाँ, आफ्टर एट के काम में कई बातें ऐसी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ यादगार पंक्तियों या विचारों को दोहराएं।
हाँ बिल्कुल। एक जो मुझे बहुत पसंद आई, डॉक्यूमेंट्री वास्तविकता का पुनरुत्पादन नहीं है, ये उस दुनिया का प्रतिनिधित्व है जिसमें हम पहले से रहते हैं। ये याद दिलाता है कि फिल्में दुनिया को सिर्फ दिखाती नहीं, उसे हमारे लिए एक मतलब देती हैं।
और एक और, डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार का वास्तविकता पर दावा हमेशा इस बारे में होता है कि हमें वास्तविक दुनिया को कैसे समझना चाहिए और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये फिल्म के प्रेरक काम पर जोर देता है, वो हमें कुछ सोचने या करने के लिए कहती हैं।
और नैतिकता पर वो बात, डॉक्यूमेंट्री में नैतिकता नियम मानने के बारे में नहीं है, ये आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के परिणामों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। ये दिखाता है कि ये कितना जटिल है, कोई आसान जवाब नहीं।
और टेक्नोलॉजी पर, तकनीक डॉक्यूमेंट्री की सामग्री तय नहीं करती, लेकिन ये तय करती है कि किस तरह की कहानियां कही जा सकती हैं और उन्हें कैसे कहा जा सकता है। मतलब तकनीक सिर्फ औजार नहीं, वो कहानी कहने की कला को भी बदलती है।
तो ये सब जानने का हमारी रोज की जिंदगी में क्या फायदा, हम क्या कर सकते हैं इस जानकारी से?
सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम बेहतर मीडिया कंज्यूमर बन सकते हैं, ज्यादा जागरूक। टीवी न्यूज हो, रियलिटी शो, यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, हम ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं।
हाँ, पूछ सकते हैं कि ये किसका नजरिया है, क्या छुपा रहा है, मुझे कैसा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। ये फेक न्यूज के दौर में तो बहुत जरूरी है।
और जो लोग खुद कंटेंट बनाते हैं, ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, वो भी सोच सकते हैं कि वे कहानी कैसे कह रहे हैं, क्या वो अपने किरदारों के प्रति जिम्मेदार हैं, उनकी आवाज क्या है।
एक नागरिक के तौर पर भी फर्क पड़ता है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बनी फिल्में देखते हुए हम भावनाओं में बहने के बजाय तर्क और सबूतों को बेहतर परख सकते हैं।
सही कहा, अपनी राय ज्यादा सोच समझकर बना सकते हैं।
और हाँ, हम डॉक्यूमेंट्री को एक आर्ट फॉर्म की तरह और ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये जानना कि एक सच्ची कहानी को पर्दे पर लाने में कितनी कला, कितनी मेहनत और कितनी नैतिक दुविधाएं शामिल हैं, ये देखने के अनुभव को ज्यादा रिच बनाता है।
तो अंत में सबसे बड़ी सीख क्या है? शायद यही कि डॉक्यूमेंट्री को बस यूं ही सच मानकर ना देखें, हमें एक्टिव दर्शक बनना होगा, सवाल पूछने वाला।
हाँ, ये समझना होगा कि कैमरे के पीछे भी एक कहानी चल रही है, कहानी कहने की कहानी। मुझे सबसे दिलचस्प यही लगा कि कैसे सच दिखाने का दावा करने वाला ये मीडियम खुद इतना व्यक्तिपरख, इतना रचा हुआ हो सकता है।
और कैसे टेक्नोलॉजी से लगातार बदल रही है, भविष्य की डॉक्यूमेंट्रीज कैसी होंगी, ये सोचना ही रोमांचक है।
बिल्कुल। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस डिजिटल युग में जहां कोई भी कुछ भी बना सकता है और वायरल कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्री का, सच्चाई का दावा और ज्यादा जरूरी हो गया है? क्योंकि हमें भरोसेमंद आवाजों की जरूरत है। या फिर ये दावा और खोखला हो गया है क्योंकि अब सच गढ़ना और फैलाना ज्यादा आसान है? सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।